सुर्खियों में
नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज के कार्यक्रम का विषय है ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन संबंधी नियम 2026। केंद्र सरकार ने कल इन नियमों को अधिसूचित किया है और ये इस साल 1 मई से लागू हो जाएंगे। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अजीत कुमार और साइबर विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप गिरधर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताकि वे इन नियमों की मुख्य बातें और इन पर अपने विचार और राय साझा कर सकें। श्री कुमार और डॉक्टर गिरधर, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
अजीत जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगी। ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार और विनियमन 2026 क्या है, जिन्हें कल अधिसूचित किया गया था, इसके कुछ मुख्य बिंदु आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें।
जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल 22 अगस्त 2025 को संसद ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पास किया था और उसी के तहत हमने करीब अक्टूबर 2025 में ही एक ड्राफ्ट रूल्स जो है कंसल्टेशन के लिए बनाए थे और ड्राफ्ट रूल पब्लिश किए थे। उसके बाद हमें करीब 2500 स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन आए और हम अब फाइनली रूल बनाकर उसको हमने कल पब्लिश किया है। दरअसल जैसा कि एक्ट में कहा गया कि हम ऑनलाइन मनी गेम्स को पूरी तरह रोकना चाहते हैं क्योंकि वो सामाजिक परेशानी के रूप में वो उभर रहा था, तो एक्ट के अनुसार 3 भागों में ऑनलाइन गेम्स को बांटा गया, सोशल गेम्स, ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन मनी गेम्स। मनी गेम्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है और सोशल गेम और ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में गेम्स को खेला जा सकता है और उनको खेलने के लिए ही ये रूल्स बनाए गए हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए और उनको खेलने के लिए। इसमें एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का प्रावधान गया है जिससे कि उस ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी के द्वारा इस कानून को जो है संचालित किया जाए।
अजीत जी, इस अथॉरिटी के बारे में विस्तार से हम आगे बात करेंगे, इसके अलावा और क्या मुख्य बिंदु हैं?
इसमें सोशल गेम्स की कैटेगरी में आप अगर चाहें तो आप हमारे पास सोशल गेम को रजिस्टर करा सकते हैं, डिटरमाइन करा सकते हैं। ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जो भी गेम होंगे वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा रिकॉग्नाइज होंगे और उसके बाद वो अथॉरिटी के पास रजिस्टर होंगे। हमने रजिस्ट्रेशन को, डिटर्मिनेशन को पूरी तरीके से सोशल गेम के लिए वॉलंटरी रखा है। अगर आप गेम में कोई भी पैसे का एलिमेंट नहीं है तो आप उसे खिला सकते हैं बगैर किसी रजिस्ट्रेशन और डिटर्मिनेशन के। डिटर्मिनेशन के कुछ फैक्टर हैं जिसके अनुसार मनी गेम अगर है तो वो नहीं खिलाया जा सकता। अथॉरिटी की कुछ पावर्स हैं जिसमें कोड ऑफ प्रैक्टिसेस और जो कोड ऑफ एथिक्स बनाने की बात है। दूसरा, जो बैंक के तरफ से जो ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे उसमें भी जो है सावधानी रखी जाए कि जिस तरीके से बैंक वगैरह किसी भी ऑनलाइन मनी गेम के लिए पैसे नहीं ले सकते, वो ई स्पोर्ट और सोशल गेम के लिए ही बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से मनी गेम को पूरी तरीके से खत्म किया गया है और सोशल गेम और ई स्पोर्ट्स के बढ़ावे के लिए और देश को एक गेमिंग हब बनाने के लिए उस तरीके से इस रूल्स को बैलेंस बना के हम लोगों ने पब्लिश किया।
अनूप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभी अजीत जी ने जो मुख्य बिंदु बताया, इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु आपको क्या लगता है जिससे कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को एक स्ट्रक्चर और एक क्लैरिटी मिली है?
जहां गेमिंग की बात आती है, गेमिंग एक ऐसा एरिया था जो बिल्कुल ग्रे एरिया में चल रहा था अभी तक। स्पेशली हम गेम्स को प्रावधान देते हैं, जैसे इसमें 3 कैटेगरी बताई, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं जिससे बच्चों का एक लर्निंग कल्चर, एक एनवायरमेंट, एक चीजें समझ में आती हैं। और हम इसको अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो हम लोग इसको बोलते हैं जैसे सिमुलेशंस या इमुलेशंस के थ्रू हम एनालाइज करते हैं और ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें और नई नई के बारे में जिज्ञासापूर्ण उसको अच्छे से समझ सकें और उस पर कार्यरत हो सके। था वो कहाँ हो रहा था, कुछ ऐसी गेम्स जैसे क्रिकेट या जो कॉमन गेम्स हैं ऐसे उनकी कुछ एप्स बन गई और वहां पर इन्वॉल्वमेंट हो गई साइबर क्राइम की, इन्वॉल्वमेंट हो गई पेमेंट्स की और चाहे ना चाहे उनसे जबरदस्ती पैसा लिया जाता था, उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता था और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, रजिस्टर हुए जिसकी वजह से, और उनकी कोई अथॉरिटीज नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था जिसकी वजह से कोई भी क्राइम कमिट कर सकता था।
जी,
तो बड़े बड़े जो गेमिंग पोर्टल्स थे जहां पर हमें ये समझना है कि गेम को गेम की तरह लिया जाए, स्पोर्ट्स की तरह लिया जाए, तो इसमें एक अपारदर्शिता आई है, एक क्लैरिटी दी गई है और जहां पर जिस चीज को रोक लगानी थी जो कि गलत है, सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट डाल रही थी, उस चीज को रोकना इम्पोर्टेंट, तो ये स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग बनाए।
जी अजीत जी, कल अपनी प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस कृष्णन ने कहा था कि सरकार ने नियमों के तहत नॉन मनी गेमिंग कंपनीज के लिए लाइट टच रेगुलेटरी अप्रोच को अपनाया है। तो चलिए पहले सुनते हैं कि सचिव श्री कृष्णन ने क्या कहा।
पिछले साल जो है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बनी थी और जिसके अंतर्गत ऑनलाइन मनी गेम्स को पूरी तरह से बैन किया गया और ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है इसके लिए कुछ प्रावधान बनाए गए थे। रूल्स मेनली ये हैं कि अथॉरिटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसमें कौन कौन सदस्य रहेंगे और वो अथॉरिटी अपना काम कैसे करेगी। कोई एक ऑनलाइन गेम को ये ऑनलाइन मनी गेम है या ऑनलाइन सोशल गेम है इसका निर्णय कैसे किया जाएगा और एक बार ये डिटर्मिनेशन हो जाता है तो फिर वो गेम का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कोई वायलेशन होता है तो उसका बैन या उसका सस्पेंशन या उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, उसका विड्रॉल ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे की जाएगी, इन सब चीजों का और ग्रीवेंस मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट करेगा, इन सब चीजों के लिए प्रावधान बनाया गया है नियमों में।
अजीत जी, आप इस लाइट टच रेगुलेटरी अप्रोच के बारे में विस्तार से बता सकते हैं?
इसका मतलब ये है कि हमने जो ड्राफ्ट रूल पब्लिश किए थे उसमें हम चाहते थे कि सारे गेम रजिस्टर्ड हो
जी।
सारे गेम आकर हमारे पास जो है बताएं कि किस तरीके का वो गेम खिलाना चाहते, और हमने ये देखा कि जहां पर पैसे का कोई आदान प्रदान ही नहीं है, जो केवल एक प्योर सिंपल सोशल गेम है, उसको हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी तरफ से इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए हमें किसी तरह का लाइसेंसिंग सिस्टम या किसी तरह का प्रेशर नहीं बनाना चाहते थे। हम चाहते थे कि गेमिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिले, भारत एक गेमिंग हब बनने की तरफ बढ़े, इसलिए हमने एक तरीके का एक बहुत ही लाइट अप्रोच लिया है जहां पर ई स्पोर्ट, चूंकि ई स्पोर्ट में पैसे का आदान प्रदान होगा इसलिए हमने उनको जरूर बाध्य किया है कि आप आके हमारे रजिस्टर हो और अपना गेम डिटरमाइन कराएं कि आप एक मनी गेम है कि नहीं। पर अगर आप एक सोशल गेम है और आप अगर कोई ऐसा गेम खिलाना चाहते हैं जिसमें पैसे का कोई भी आउटकम नहीं है, जहां पे कोई भी दाव की या जुड़े की बात नहीं है, तो आप उसे खिला सकते हैं, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। पर हमने बैलेंस के लिए ये प्रावधान जरूर रखे हैं कि कोई अगर कंप्लेंट हो या कहीं से सूचना मिलती है कि आपका एक मनी गेम है तो अथॉरिटी सुओ मोटो बेसिस पर उसकी जांच कर सकते हैं
जी।
इस तरीके का इसमें बैलेंस अप्रोच लिया।
अनूप जी, जैसे कि भी अजीत जी ने हमें बताया कि जो नियम बने हैं उसमें एक जो विशेषता ये है कि ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो वॉलंटरी बना दिया गया है, तो इस फीचर को आप कैसे देखते हो? साथ ही एक और फीचर है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि सरकार ने इन गेम्स के लिए लाइसेंस की वैधता को भी आसान बना दिया, खासकर वो गेम्स जैसे कि हम बात कर रहे थे जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो ये दोनों जो फीचर्स हैं इन नियमों के, उन्हें आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये लाइसेंसिंग में जो एक ढील दी गई है और जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का एक जो प्रावधान है, इससे रेगुलेशन कितना कामयाब होगा?
देखिए, अभी बिल्कुल आई थिंक पायलट बैच है इस चीज को लेके। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी एप्स, अगर उन्हें लाइसेंस लेना है तो अब क्या एक होड़ लग जाएगी लाइसेंस लेने के लिए। सबसे पहले उन्हें ये देखना है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, दूसरा उन्हें ये देखना है कि जो वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हालांकि लाइसेंस लेना आसान हो गया, और अगर उनकी सारी फीचर्स, सारे जो एक्टिविटीज हैं, अगर वो कंप्लाइंट हैं एज पर द नॉर्म्स, जो तीन कैटेगरी में जैसे बताया गया, अगर उसमें से अगर कहाँ पे कंप्लाइंट हैं और वो वैध हैं, तो उनको सीधा 10 साल का लाइसेंस भी तो मिल रहा है
जी।
तो द पीरियड ऑफ दैट लाइसेंस जो है वो सीधा 10 साल के लिए है। यानी एक अच्छी बात यह है कि एज अ यूजर अगर मैं गेम खेलने लगाऊं और अगर मैं उसका गेम खेलने से पहले एक लाइसेंस चेक कर लूं कि उसकी वैधता है और उसके पास 10 साल का है उसका है, यानी ये गेम एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करती है, लेजिटिमेट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हम आराम से उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो टेक्निकली आप देखेंगे तो ये एक अच्छी बात है ना। हालांकि बहुत सारे गेम्स और जो ओनर्स हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली स्टार्टअप्स हैं, उन लोगों को इन सब चीजें लीगल और टेक्निकल कंप्लाइंसेस देख के उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि अभी उनको अपने फीचर्स को वैसा मोल्ड करना पड़ेगा।
बिल्कुल,
बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो अभी अलग तरीके से बन रही थी, किसी भी डायरेक्शंस नहीं थी उनके पास और कैसे भी वो प्रोसेस कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें ये नॉर्म्स को लेके अपनी गेम को चेंज करना पड़ेगा, नया वर्जन लाना पड़ेगा, नए तरीके से उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी रजिस्ट्रेशन मिलेगी, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं।
अजीत जी, आपने पहले ही जवाब में आपने बात की थी कि इन नियमों के अंतर्गत एक भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण यानी कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन भी होगा, तो ये अथॉरिटी, इसकी क्या भूमिका होगी और ये ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के विनियमन को किस प्रकार से सुनिश्चित करेगी?
जी, हम लोगों ने इसमें एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का प्रावधान किया है जिसमें चेयरमैन जो है वो मेटिक के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होंगे और उसमें अन्य मंत्रालय जो होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, लॉ एंड जस्टिस, फाइनेंस के मेंबर वगैरह होंगे और इस अथॉरिटी के द्वारा ही इस पूरे कानून को संचालित किया जाएगा। अथॉरिटी की कुछ शक्तियां हैं जिसमें अथॉरिटी एक गेम्स की लिस्ट भी बनाएगी जो गेम मनी गेम की कैटेगरी में फॉल होंगे। अथॉरिटी इन गेम को डिटरमाइन भी करेगी, अथॉरिटी इन गेम को रजिस्टर भी करेगी, अथॉरिटी कोड ऑफ प्रैक्टिस भी बनाएगी जिसमें गेम को रेगुलेट करने के लिए समय समय पर जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। अथॉरिटी एडवर्टाइजमेंट अथॉरिटी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए भी गाइडलाइन बनाएगी। तो पूरी तरीके से अथॉरिटी को हमने एक तरीके से शक्तियां भी दी हैं और अथॉरिटी को हमने एक कंप्लेंट सुनने का जरिया भी बनाया है
जी।
अगर किसी यूजर को किसी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म से समस्या है तो अथॉरिटी के पास कंप्लेंट कर सकता है और अथॉरिटी उस पर एक्शन भी ले सकती है। अथॉरिटी एक तरीके से आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ऑनलाइन ऑफिस है, किसी को भी फिजिकली आने की भी जरूरत नहीं है। एक पोर्टल है जिसके जरिए एक ऑनलाइन ऑफिस की तरह ये काम है। तो अथॉरिटी के पास इस पूरे संचालन की शक्ति भी है और अथॉरिटी के पास जो है कंप्लेंट सुनने की भी शक्ति है। अथॉरिटी के पास समय समय पर जैसे जैसे इस इकोसिस्टम में बदलाव आएगा वो जो प्रैक्टिस गाइडलाइंस जारी करने की भी शक्ति हमें मिली है
जी। अजीत जी, अगला सवाल भी मेरा आपसे ही है कि पिछले साल जब संसद ने ये एक्ट यानी कि प्रॉग एक्ट को पास किया था तब प्रधानमंत्री ने उसके बाद कहा था कि भारत को गेमिंग इनोवेशन और क्रिएशन का हब बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में एक बात कही थी और साथ ही उन्होंने कहा था कि हमारे समाज को ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स के बुरे असर से बचाने की भी उन्होंने बात कही थी जब ये एक्ट पास हुआ था। तो ये जो नियम कल जो नोटिफाई किए गए हैं इनसे इनोवेशन और उपभोक्ता सुरक्षा के बीच में संतुलन कैसे बनाया गया है?
सबसे पहले तो मनी गेम को हटाकर एक तरीके से हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन को पूरी तरीके से संरक्षित किया है। दूसरी तरफ हमने सोशल गेम और ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी को हमने एक स्ट्रक्चर देकर उसके बढ़ावे के लिए एक माहौल तैयार किया है। और जैसा कि गिरिधर जी कह रहे थे कि बिल्कुल भी इस वक्त ऑनलाइन गेम का जो एरिया था वो बिल्कुल अनरेगुलेटेड था, तो इसके रेगुलेट होने से इंडस्ट्री को भी एक इंडिकेशन मिला है कि उसे किस डायरेक्शन में बढ़ना है। और ऑनलाइन गेम जो है बनाकर इस देश को एक गेमिंग हब बनाने के लिए इस पूरे रूल में एक तरीके से इकोसिस्टम तैयार करने की शक्ति है और हम इसके धीरे धीरे इसके उपयोग के बाद देखेंगे कि किस तरीके से ये एक्ट संचालित होता है और आगे कोई संशोधन की या कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है जो इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए आवश्यक है तो वो भी हम इसमें करें।
अनूप जी, आप क्या कहेंगे कि ये जो नियम बने हैं इनसे इनोवेशन और उपभोक्ता सुरक्षा के बीच में किस तरह का संतुलन बना है?
देखिए, संतुलन बहुत जरूरी है
जी।
बच्चे जो है सबसे ज्यादा इमोशनल, इजिली कनेक्टेड और सॉफ्ट टारगेट होते हैं, जिसकी वजह से सभी एप्स जो बनाने वाले थे उन्हीं को टारगेट करके उन्हीं से उनका यूपीआई आईडी ले लेना या कोई कार्ड्स लगवा लेना या वॉलेट बना के उसमें कुछ पैसे डलवा के और उनसे प्रोसेस करवाना, ऐसे बहुत सारी गेम्स रही। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी रही कि बच्चों का दिमाग आप समझिए हिप्नोटाइज हो गया
जी।
जैसे ही टेक्निकली वो लोग अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को या उन सबको बुलाते हैं, वहां पर आप समझेंगे जो लोग कनेक्टेड हैं वो अपना माइक, अपना स्पीकर, अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं और वो सब स्पेसिफिक वीपीएन में कनेक्टेड है
जी जी।
अब ये टेक्निकली अगर आप समझे तो वीपीएन से कनेक्ट होने का मतलब उनके सारे डिवाइसेस एक्सेस किए जा सकते हैं उनके प्रोवाइडर्स के थ्रू
जी जी,
और वही डिवाइसेस कहीं ना कहीं क्राइम करने के लिए भी यूज हो रहे थे। तो बैकएंड अगर आप देखें, टेक्निकल देखेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा गैप नजर आएगा। इन सबके लिए ये चीजें होनी बहुत जरूरी थी, इम्पॉर्टेंट थी और इनको रोक लगाने का तरीका भी यही
जी। अजीत जी, जो इंडस्ट्री का इकोसिस्टम की अगर नजरिए से देखें तो ये जो नए नियम बने हैं, हम अभी इनोवेशन की बात कर रहे थे, हम इतनी ये जो तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री इसकी बात कर रहे थे, तो ये जो नियम बने हैं निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने में कैसे मदद करेंगे, खासकर स्टार्टअप्स को किस तरह से ये प्रोत्साहित करेंगे?
हम लोगों ने बिल्कुल साफ कर दिया है और हमने सेक्टर्स को बिल्कुल डिवाइड कर दिया है। हमने कहा है कि भाई आप मनी गेम नहीं खिला सकते इस देश में, पर बाकी जो दो गेम है, सोशल गेम है, ई स्पोर्ट्स है, उसमें आप इनोवेशन करिए, स्किल डेवलपमेंट करिए, चाहे छोटे स्टार्टअप करें, चाहे बड़ी कंपनियां करें, चाहे, और इस देश में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऐसे देशों से भी आ सकता है जहां पर बहुत अच्छे अच्छे गेम्स की इंडस्ट्री ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है। तो हमने इंडस्ट्री को पूरी तरीके से एक इंडिकेशन और डायरेक्शन दिया है और ये पूरा जो प्रोसेस हुआ है इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन के बाद।
बिल्कुल,
अगर ये इकोसिस्टम थोड़े दिनों में अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चला तो हमें पूरी उम्मीद है कि वैश्विक स्तर पर भारत एक गेमिंग हब बनके उभरेगा
जी। अजीत कुमार जी और डॉक्टर अनूप गिरिधर आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल होने और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
श्रोताओं, आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में।